أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. الله تعالى جو مخاطب ہیں ان کی نفسیات سے پوری طرح واقف ہے. ظاہر ہے کہ اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور طبیعتیں اور فطرتیں اور جو خصوصیتیں ہیں سب اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہیں. اللہ نے بنا کر انسانوں میں ڈالی ہیں اور انسانوں کو امتیاز دیا ہے دوسری مخلوقات پر کہ ایسی خصوصیات دوسری مخلوقات میں نہیں پائی جاتی. حتیٰ کہ اجنہ سے بھی انسانوں کو اوپر رکھا ہے یا اجنہ کو بھی کی خصوصیات سے انسانوں کی خصوصیات کچھ بڑھی ہوئی ہیں. اور یہ فرمایا ہے کہ لقد کرمنا بنی آدم و حملناہم البر و آیت ہے کہ ہم نے عزت والا بنایا ہے انسان کو. اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جب انسان کو اپنا خلیفہ بنا رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ اپنا نائب بنا رہا ہے تو ظاہر ہے کہ ساری مخلوقات سے بہتر ہوگا خصوصیات کے لحاظ سے. جبھی تو یہ کام اس کو سپورٹ کیا گیا ہے. اور اس دنیا میں جو بھی فائدے ہیں اور نعمتیں ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ ان کو انسان کے فائدے کے لیے اللہ نے متعین کیا ہے تاکہ انسان کام کر سکے کارکردگی اس کی ہو سکے. اس لیے کہ آپ کسی سے کام لیں تو اس کام کو انجام دینے کے لیے جن صلاحیتوں کی ضرورت ہے صحت کی ضرورت ہے اور دوسرے جو خصوصیات ہیں وہ جب ہوں گی جبھی آپ اس کو کام سے پوچھ کریں گے. اس فن سے اگر واقف نہیں ہے جس فن کی ذمہ داری اس پر ڈالی جا رہی ہے تو اس فن کو وہ کیسے انجام دے سکتا ہے نہیں دے سکتا. جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنانے کا فیصلہ فرمایا تو انسان میں وہ خصوصیات رکھیں وہ صلاحیتیں رکھیں جو اس کام میں معامل ہوں اور اس کام کو انجام دے سکے. اور پھر یہ کہ جب وہ اس کام کو انجام دے گا تو اس کو زندہ رہنے کے لیے بہت سی چیزوں کی ضرورت پڑے گی تاکہ وہ کام کر سکے. وہ سب اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمایا اور طے فرمایا. اب اس کے لحاظ سے آپ دیکھیے کہ انسان پر اللہ تعالیٰ نے کتنا انعام کیا کہ اس کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں اور وہ اپنی حیثیت سے خود اپنی ذاتی حیثیت سے اس قدر کم ہے اتنا چھوٹا ہے کہ اگر اس پر چھوڑا جائے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور اس کو آپ دیکھ لیے بچہ جو ہے بچے میں کوئی صلاحیت نہیں ہوتی کوئی کام نہیں کر سکتا بچہ لیکن اللہ تعالیٰ پھر اس کو ایسے مواقع عطا فرماتا ہے ماحول اور علم کے ذریعے سے اور جو اس کو اللہ نے عقل دی ہے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھتا چلا جاتا ہے کہ جو اس کے لیے بہتر ہے اور جو اس کی ذمہ داری ہے. तो इन नेमतों का भी तकाजा ये है कि इंसान अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे। सबसे बड़ा शुक्र तो इस बात का कि उसने खलीफा बनाने का फैसला फरमाया कि इंसान को खिलाफत यानी नियाबत दी जा रही है, तो नियाबत के लायक अपने को बनाना उसको चाहिए। जो जो काम सिवर किया जा रहा है अपने को उस काम के लायक बनाना चाहिए, उसमें जो काम के लिहाज से जो तकाजे हैं उन तकाजों को पूरा कर सकता हो। अगर उसमें काम की सलाहियत तो नहीं पैदा करता तो जाहिर है कि वो उस काम को अंजाम नहीं दे सकता। तो अल्लाह ताला तो उस पर यह इनाम फरमा रहा है कि उसको नायब बना रहा है और वो अपने में अपने को उसके काबिल नहीं बना रहा है। इसका मतलब यह है कि वो नालायकी कर रहा है। एक तो ये कि अल्लाह ताला की मर्जी के खिलाफ कर रहा है कि अल्लाह ताला चाहता है कि वो नियाबत करे, खिलाफत का फर्ज अंजाम दे, और वो अपने को उसके लिए तैयार नहीं कर रहा है, उससे एराज कर रहा है। तो ये एक बागियाना अमल हुआ। फिर दूसरी बात ये कि अल्लाह ताला ने उसको काम करने के लिए जिन जिन चीज़ों जिन सलाहियतों की और जिन ताकतों की ज़रूरत है वो अल्लाह ने उसमें रखी हैं। उसमें अक्ल रखी है, उसमें इल्म हासिल करने की सलाहियत रखी है, इल्म से फ़ायदा उठाने की सलाहियत रखी है, और मकसद को समझने की सलाहियत रखी है कि जो मकसद है उसकी ज़िंदगी का, उसको दुनिया में पैदा किया गया घूमने फिरने के लिए नहीं, ऐश करने के लिए नहीं, बल्कि काम करने के लिए। यानी उसको काम से पूछ किया गया है तो उसके लिहाज से उसको ज़िंदगी दी गई है। जितना काम अल्लाह ताला जिस इंसान से लेना चाहता है उसी के लिहाज से उसको ज़िंदगी देता है, उसी के लिहाज से उसको वसाइल अल्लाह ताला अता फरमाता है ताकि वो काम कर सके। जैसे मजदूर आप रखते हैं तो मजदूर को काम करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है और जिन सहूलतों की ज़रूरत है वो आप मुहैया करेंगे, वरना काम कैसे करेगा? वो कहेगा हम कैसे काम कर सकते हैं, हम भूखे प्यासे नहीं रह सकते, हम हमारी इतनी ताकत नहीं है कि हम कोई बड़ा बोझ उठा सकें, हम जितना बोझ उठा सकते हैं उतना ही बोझ उठाएंगे। तो अल्लाह ताला ने वो सारी खसूसियात अता फरमाई इंसान को कि जिनके ज़रिए से वो उस काम को अजीम काम को अंजाम दे सके। अब वो ये खसूसियात तो उसको मिल गई, काम की सलाहियतें मिल गईं, लेकिन इन सलाहियतों को इन खसूसियात को बजाय इसके उस काम के लिए सर्फ करे, वो अपने आयश के लिए और लुत्फ के लिए और मज़े के लिए सर्फ कर रहा है, खा रहा है, उड़ा रहा है, बक रहा है और जो चाह रहा है कर रहा है, लेकिन कैसे कर रहा है? उन सलाहियतों से कर रहा है जो सलाहियतें उसको अल्लाह ने दी हैं। और वो सलाहियतें उसको इसलिए नहीं दी हैं कि वो हा हवा और तफरी और उसमें वो सर्फ करे, बल्कि अल्लाह का दिया हुआ काम है उसमें वो सर्फ करे, उसको अंजाम देने के लिए उनको इस्तेमाल करे। तो अब एक शख्स जो है जो उसके लिए तैयार नहीं है कि अल्लाह ताला जो काम उसको सपोर्ट कर रहा है वो करे, जबकि अल्लाह ने उसको पैदा किया है, उसको बनाया है, उसको सारी चीज़ें आता फरमाई हैं, उसके बाद भी वो काम करने से अगर इनकार करता है या पहले तो ही करता है तो ये तो बागियाना अमल हुआ। बागियाना अमल हुआ कि अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह को मिल्क है, ममलूक है, अल्लाह मालिक है उसका, और अल्लाह मालिक है, वो उसके साथ जो चाहे सलूक करे, इसलिए कि वो मालिक है, वो खालिक है, वो उसको जो काम देना चाहता है वो काम वो नहीं कर रहा है, तो अपने बगावत कर रहा है अपने मालिक की, नंबर एक। नंबर दो ये कि उसके मालिक ने जो उसको सलाहियतें दी हैं, खसूसियात दी हैं, इसलिए कि ताकि वो काम को अच्छी तरह अंजाम दे सके, उनको वो अपने नफ्स और अपनी ख्वाहिश के लिए इस्तेमाल कर रहा है बजाय इसके लिए काम के लिए इस्तेमाल करे। तो ये ख़यानत भी हुई कि उसको खसूसियात दी गई थी जिस काम के लिए उसमें नहीं सर्फ कर रहा है बल्कि अपने मनमाने तरीके से उसको सर्फ कर रहा है। आपको एक रकम दी जाए कि इस रकम को तुम इससे तुम फला फला तुम इससे सफ़र करो, तुम इससे फला काम करो, इससे फला काम करो ताकि फला मकसद हल हो जाए, तो वो आदमी उसमें नहीं सर्फ कर रहा है, अपनी ख्वाहिश में सर्फ कर रहा है, तो वो काबिल सज़ा होगा। तो अल्लाह ताला ने इंसान को इस ज़मीन पर काम करने के लिए ख़ास उम्र और ख़ास हालात में पैदा किया है। ये जिस जमाने में इंसान पैदा हुआ है और जिन हालात में पैदा हुआ है, ये अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर करना है, ये इत्तेफाकी नहीं है। एक तो बात ये समझने की है कि दुनिया में कोई चीज भी इत्तेफाकी नहीं है, जितनी चीजें अल्लाह की बनाई हुई हैं और सब चीजें अल्लाह की बनाई हुई हैं, जितनी चीजें मुकर्रर की गई हैं सब अल्लाह की तरफ से मुकर्रर की गई हैं। दिन रात का आना जाना, सूरज का निकलना डूबना और चांद का निकलना डूबना और जमीन से गल्ले के पैदा होना और फूल फल और ये मेवे पैदा होना, ये सब कोई चीज इत्तेफाकी नहीं है। जितनी जो भी अल्लाह ने किया है, जो बनाया है, वो इत्तेफाकी नहीं है, वो उसका मकसद है और वो मकसद इंसान को बताया गया है और इंसान को उसका जिम्मेदार करार दिया गया है। तो जो किसी जमाने में पैदा हुआ है, जिस जमाने में पैदा हुआ है, जिन हालात में पैदा हुआ है, वो अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर करदा है। अल्लाह ताला ने उसके लिए उसी को यही तजवीज़ फरमाई। जिस मजदूर को लगाएंगे आप, तो किसी मजदूर से कहेंगे तुम ईंटें ढो, किसी से कहेंगे तुम गारा बनाओ, यानी जो 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 उसका जिम्मेदार होगा वो क्या करेगा कि तुम गारा बनाओ, तुम ईंटें उठाओ, ईंटें पहुंचाओ, तुम जगह साफ करो, तुम ये करो, तुम पानी लाओ, ये कहेगा। अब वो मजदूर जो है वो अपनी मनमानी करने लगे, उसे पानी लाने को कहा गया वो ईंटें उठा रहा है, उसे ईंटें उठाने के लिए कहा गया वो गारा बनाने लगा, तो क्या होगा, उनको काबिल सजा समझा जाएगा। तो जो कुछ हालात इंसान के पेश आते हैं, ये सब कोई भी इत्तेफाकी नहीं है, एक चीज भी इत्तेफाकी नहीं है, सब अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर है। और अल्लाह ताला ने जो चीजें भी मुकर्रर की हैं, वो कायनात बनाने से पहले मुकर्रर कर दी है, जिसको अल्लाह ताला किताब के लफ्ज़ से अदा फरमाता है। किताब का मतलब ये है कि जो अल्लाह ने तय कर दिया, किताब से मुराद और किताबत से मुराद तय कर देना है। तो अल्लाह ताला ने जो ये आलम बनाया और सब मखलूकात को बनाया, बनाने से पहले उनको तय कर दिया, जिसको हम लोग प्लानिंग से ताबीर करते हैं कि आप कोई इमारत मसला आप बनाना चाहते हैं, मकान बनाना चाहते हैं, तो आप उसका एक नक्शा बनाएंगे कि इसमें इतने कमरे होंगे और इसमें फलां जगह होगी, ये होगा वो होगा, कागज पर एक नक्शा बनाएंगे, अपने जहन में एक नक्शा बनाएंगे, तो उसी नक्शे के मुताबिक वो सब चीजें बनेंगी। तो अल्लाह ताला ने पूरी कायनात में जो कुछ होना है और जो कुछ अल्लाह ताला चाहता है और जिसके जो भी अल्लाह ने अख्तियार दिया है, ये सब पहले से तय कर दिया गया। और इसको कुरान मजीद में बार बार कहा गया है कि हमने पहले से तय कर दिया है, और ये तक तय कर दिया है अल्लाह ने कौन वफादार होगा और कौन नालायक होगा। तो अब इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान में जिन पर नाजिल फरमाया, जिस कौम पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया, अरबों का मिजाज भी अल्लाह ताला के नज़दीक इस काम के लिए अव्वलीन लोगों का मिजाज है। यानी अरबों का मिजाज का जायजा अगर लिया जाए उनके जबानदानी का, उनके उनके जज्बात का, तो वो सलाहियतों के साथ इस्लाम को दीन की दावत के पहले रहनुमा होने के लायक हुए। अल्लाह ने उनमें सलाहियत रखी कि वो दीन के पहले दाई वो बन सकें। और जिस जमाने में हुज़ूर सल्लम को मबूस फरमाया, उस जमाने में आपका मबूस फरमाना भी अल्लाह ताला की तरफ से हिकमत के साथ था। तो अल्लाह ताला अरबों की नफ्सियात को पूरी तरह जानता है, यानी खसूसियत अंदर की जो खसूसियात होती हैं जिनको नफ्सियात कहते हैं, वो अल्लाह ताला क्योंकि सब बनाए हुए हैं, खसूसियात भी बनाई हुई हैं, तो अल्लाह ताला उनकी खसूसियात को खूब जानता है। तो उनके उनकी तरफ से जो रवैया इस्लामी दावत के सिलसिले में सामने आया, ये सब अल्लाह ताला को खूब मालूम है कि क्यों है और कैसे है और वो क्या उसके अंदर गड़बड़ करते हैं और क्या वो उसके अंदर रुकावट डालते हैं। तो अरबों में बुत परस्ती जो आई, तो अधाधुन किस्म की बुत परस्ती, यानी जिस चीज की जैसे आप देखेंगे मुशरिकीन का हाल है कि उनके यहाँ कोई उसूल पूछा जाए कि तुम्हारे यहाँ क्या उसूल है माबूद बनाने का, तो उसको नहीं बता सकेंगे कि माबूद बनाने का क्या उसूल है। कोई किसी चीज को माबूद बनाए हुए है, कोई किसी चीज को माबूद बनाए हुए है, और माबूद बनाने का मतलब क्या है कि ये हमको वो चीज दिला सकते हैं, हमारा वो काम करा सकते हैं जो इंसान नहीं कर सकता। भाई आप पत्थर कैसे आपका वो काम कर सकता है जो इंसान नहीं कर सकता, और लकड़ी कैसे कर सकती, दरख्त कैसे कर सकता है, जानवर कैसे कर सकता है। तो माबूदान बातिल जो हैं, जिनको इंसानों ने माबूद बना रखा है, उनको देखिए तो अकल से उसे किसी तरह ताल्लुक नहीं मालूम होता। इसलिए कि जो चीज सब देख रहे हैं कि वो चीज खुद कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं है, इंसान उसको जिस तरह चाहे इस्तेमाल करे, उठा के पटक दे, तोड़ दे, और जो चाहे करे, वो उससे वो इनकार भी नहीं कर सकती वो चीज। उसको तुम एक तरफ तो तुम उस पर पूरी तरह हावी हो और जो चाहो उसके साथ मामला करो, और दूसरी तरफ तुम समझते हो वो तुम पर हावी है और तुम्हारे वो सारे काम अंजाम दे देगा और तुम्हारी मुसीबत को टला देगा, तुम्हारी परेशानी को रफा कर देगा और तुम्हें कामयाब बना देगा। ये दोनों बातें कैसे जोड़ खाती हैं? तो अकल से बिल्कुल ताल्लुक उसका नहीं है। और अरबों में बुत परस्ती यहाँ तक पहुँच गई थी कि वो आखिर में बुत परस्ती बढ़ती चली गई। बेअकली जो है उसकी तो कोई हद ही नहीं है, अकल की तो हद होगी लेकिन बेअकली के बाद जो है उसकी कोई हद ही नहीं, जो बेअकली में जो चाहिए कीजिए। तो ये करने लगे कि काबे से ताल्लुक था उनको, काबे को समझते थे कि अल्लाह का घर है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चूंकि दीन पर शुरू में थे इसलिए वो चीज़ें बुनियादी बातें कुछ थी उनमें, तो काबे का पूरा एहतराम करते थे, सारा अरब काबे का एहतराम करता था और वो हज करने आते थे सब लोग और काबे का तवाफ करते थे और उसको समझते थे कि मुतबर्रक है। तो अब यह करते थे कहीं सफर पे जा रहे हैं, बुत नहीं है तो काबे का पत्थर एक कोई ले लिया और बस उसकी अब पूजा कर रहे हैं सफर में। और उसके बाद और अगर ऐसा नहीं हो सका तो कुछ नहीं मिला तो आटे का एक बुत बनाया और उसकी पूजा की, उसके बाद उसको खा लिया, इसलिए भूख अब खाने की कोई चीज़ नहीं थी तो वही खा लिया। यानी अक्ल से इसका क्या ताल्लुक, कोई ताल्लुक नहीं। इस तरह बस अवहम जिसको वहम कहते हैं, वहम पर सारा उनका मसलक चलता है। और सच्ची बात यह है अगर पूछा जाए कि शिर्क जो है उसकी क्या बुनियाद क्या है, तो उसकी बुनियाद वहम निकलेगी, वहम कि शायद ऐसा ना हो, शायद ऐसा हो, इस शायद पर सारा मसला उनका चलता है। कि अब ये सब लोग कहते हैं कि इसके सामने झुकने से हमें फायदा होता है, अच्छा है झुकने से क्या हर्ज है, हम भी इसके सामने झुकें। तो कहते हैं इस दरख्त से मांगने से कुछ मिल जाता है तो क्या हर्ज है, हो सकता है ऐसा हो इसलिए हम भी मांगेंगे उसको। इस तरीके से बुत परस्ती आम हो जाती है और ये तारीख में बार बार हुआ है। और बुत परस्ती के अलावा यानी तौहीद इख्तियार करने के साथ साथ वह अखलाक हसना जो हैं, जो इंसान के मकाम के मुताबिक हैं और जिसमें फ़ायदा है सबका, वो सब की तरक्की की गई है अल्लाह ताला की तरफ से। और मजहब पहले एक ही था, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ने दीन अता फरमाया था वही दीन था, सब उसके मानने वाले थे। हज़रत आदम की औलाद जब बढ़ती रही और बेटों के बेटे होते रहे, पोते होते रहे, पर पोते होते रहे और हालात जो पेश आते रहे, तो इस वहम ने उनको बतदरीज बुत परस्ती में लगा दिया। मतलब ये कि ये वो हज़रत आदम को समझते थे कि नबी हैं और बड़े बुजुर्ग हैं, अल्लाह के पसंदीदा हैं, लिहाजा उनको याद कर देना और उनका नाम लेना इसमें हमारा फ़ायदा है, अल्लाह ताला खुश होगा। यहाँ से बात शुरू की, उसके बाद फिर अल्लाह खुश होगा ये बात निकल गई बात, अब यह है कि हमारा काम चल जाएगा, हमारा फ़ायदा हो जाएगा। उसके बाद उनके जो औलाद में जो नेक लोग हुए उनके मानने वाले भी इसी तरह उनको मुकद्दस मानने लगे, मुकद्दस मानते मानते उनकी इबादत करने लगे اور اس عبادت کو ضروری سمجھنے لگے. پھر یہ کہ اب کوئی چیز علامت ہونی چاہیے, ہوا میں کیسے عبادت کریں, ہوا میں کیسے کریں, تو ایک چیز علامت کے طور پر سامنے رکھ لی. علامت جس کا تعلق کچھ اس سے ہے جس کو وہ اپنا خدا سمجھتے ہیں, اور پھر اس کی عبادت کرنے لگے اور سب کچھ اسی کو سمجھنے لگے, اور خدا کو ماننے کے ساتھ ساتھ بھی یہ سمجھنے لگے کہ ہاں خدا تو ہے سب سے بڑا, لیکن یہ کہ وہ اس کو کہاں وہ تکلیف کرے گا کہ ہماری بات کو سنے اور ہماری مدد کرے. ہمیں تو جیسے دنیا میں ہوتا ہے کہ بادشاہ ہے, بادشاہ ہر کام نہیں دیکھتا, ہر کام نہیں کرتا, اس کے جو ملازمین ہیں اور جو اس کے ہر کارے ہیں ان سے کام چلے گا, ان سے آپ کام لے لیجئے, بادشاہ کے پاس جانے کی ضرورت ہے؟ بادشاہ تو کہاں, بادشاہ کہاں چکر میں پڑے گا, اس نے جو آدمی مقرر کیے ہیں ان سے آپ کام لے لیجئے. یہی انہوں نے دین کے سلسلے میں کر لیا کہ اللہ ہے لیکن بس ہے, ہمیں اللہ سے نہیں لینا ہے, اللہ سے ہمیں نہیں ملنا ہے, ہمیں تو ان سے ملے گا, یہ جو اللہ کے پسندیدہ ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے خود سنایا ما نعبدہم الا ليقربونا الى زلفا, ان کی دلیل ایک یہ تھی کہ ہم ان کی عبادت جو کرتے ہیں اس لیے کہ یہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں گے, یعنی یہ ہمارا کام کر دیں گے, اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں. ان کو ہم اصل خدا نہیں مانتے, لیکن یہ کہ خدا تک پہنچانے کے ذریعہ ہیں, تو ہم ان کا اکرام کریں گے, ان کی عبادت کریں گے, تو یہ خوش ہو کر ہماری سفارش اللہ تعالیٰ سے کر دیں گے. اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہم نہیں مانگ سکتے. اور حکم یہ ہے کہ ہم وسائط اسلام میں وسائط نہیں رکھے گئے, براہ راست اللہ سے مانگیے, بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے. اور اس کو منع کیا گیا کہ وسائط نہیں, اللہ تعالیٰ کے یہاں وسائط نہیں ہے, ہر انسان اللہ سے براہ راست مانگے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز دیتا ہے, ہر چیز اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو بادشاہ نہیں, ویسے بادشاہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جس نے ملازمین مقرر کر دیے ہیں, اسٹاف بنا دیا ہے کام کرنے کے لیے, خود تخت سلطنت بیٹھا ہوا ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ ہر کام کو دیکھ رہا ہے. اور فرمایا قرآن نے کئی جگہ آیا کہ کوئی چیز بھی چھوٹی ہو بڑی ہو وہ ہمارے کرنے سے ہوتی ہے, اور ایک ایک حبہ جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں جانتے ہیں, اور بلکہ ہماری اجازت سے ہر کام ہو رہا ہے, کوئی چیز خود سے کچھ نہیں ہے, ہمارے کرنے سے ہے. مثلاً دوائیں ہیں, دوائیں اثر ڈالتی ہیں, تو وہ اس لیے نہیں ڈالتی کہ دواؤں میں اثر ہے, ان دواؤں کو اللہ نے ذریعہ بنا دیا ہے اثر ڈالنے کا, وہ اثر اللہ ڈالتا ہے. دوا اثر کرتی ہے تو اللہ کے کہنے سے اثر کرتی ہے, وہ خود سے اثر نہیں کرتی. اور یہیں سے فرق ہو جاتا ہے توحید اور شرک میں, کہ آدمی سمجھتا ہے کہ اللہ کیا کرے گا, اللہ تو بہت بڑا ہے, یہ چیزیں کرتی ہیں, ان چیزوں میں یہ صلاحیت ہے. اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں میں صلاحیت نہیں ہے, یہ صلاحیت ہم نے ان میں ڈالی ہے, یہ صلاحیت تو یہ کام کرتی ہے, ہم ان کو استعمال کرتے ہیں. آپ چمچے سے کھانا کھاتے ہیں تو چمچہ بیچارہ وہ خود کچھ نہیں ہے, وہ تو بنانے والے نے اس کو جیسا بنا دیا ہے وہ ویسا بن گیا ہے. اب اس کو جو چلائے گا وہ چلے گا, نہیں چلائے گا تو نہیں چلے گا. بہرحال تو اللہ تعالیٰ ان کی نفسیات سے خوب واقف ہے عربوں کی, اس لیے یہ قرآن مجید میں وہ لوگ مخاطب ہیں. اور جو ان کی بت پرستی ہے اور ان کی جو ان کا جو شرک ہے اور جو ان کے باتیں ہیں, ان کی اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتا ہے کہ یہ ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں, ایسی ایسی باتیں سوچتے ہیں کہ جو کسی طرح صحیح نہیں ہے. فرمایا کہ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَن عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنِ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ, یعنی تم سمجھتے ہو بہت سی چیزوں کو کہ وہ تمہارا کام انجام دے سکتی ہیں, ایسا نہیں ہے. جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے یعنی فرشتے وغیرہ, لا يستكبرون عن عبادته, وہ اللہ کی عبادت سے ذرا بھی بڑائی نہیں دکھاتے, ولا يستحسرون, اور نہ وہ تھکتے ہیں. یسبحون الليل والنهار لا يفترون, اور وہ رات ہو دن ہو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں, اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگے رہتے ہیں. वो उनके भी ये नहीं है कि थोड़ी देर आराम कर लो, उनका आराम नहीं है, उनका मुसलसल वो अल्लाह की इबादत में है। उनकी इबादत का तरीका अल्लाह ने जो रखा है वो उस तरीके से वो इबादत करते हैं। तो वो अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं दिन रात ला यफ्तरून, और वो थकते नहीं है। अमित तखदु आलियातम लर्द हुशरून, क्या अल्लाह ताला ने जमीन में खुदा बना रखे हैं तुम्हारे? यानी अल्लाह ताला के तहत तुम कैसे कहते हो कि ये सब खुदा है? ये क्या अल्लाह ने जमीन में खुदा बनाए वहां से? तुम यूनशिरून, वो तुमको पैदा, तुमको दोबारा पैदा कर सकते हैं? लौकान अभी आलियातल्लाह फजल अता फरमाता है कि भाई पहले तो ये अक्ल की बात समझ लो कि अगर कई खुदा होते तो आपस में उनमें टकराव होता, लफजत आता, जमीन आसमान दोनों में बिगाड़ पैदा हो जाता। एक कहता कि जमीन इतनी बड़ी बनाई जाए, एक कहता नहीं छोटी बनाई जाए। जब बराबर के होंगे तो उसमें राय का फर्क होगा, राय का फर्क होगा, टकराव होगा। एक तो बात यह कई खुदा से निजाम नहीं चल सकता, एक ही का निजाम चलेगा, एक ही के तहत सब हो सकता है। अगर कई बराबर के होंगे तो जरूर इख्तलाफ होगा, और जमीन और ये आसमान में तुम जो सुकून देखते हो, हर चीज कायदे से हो रही है, ये एक खुदा के होने की दलील है। तो फरमाया कि सुभान अल्लाह रब्बिल अर्श अम्मा यसिफून, अल्लाह ताला की तारीफ बयान करो, अल्लाह ताला की तारीफ है और वो इन चीज़ों से बड़ा है। और ये बस जो लोग बयान करते हैं खुदा का या बुतों का, ये सब गलत है। ला युसलो अम्मा यफलो वहुम यसलून, और अल्लाह ताला से नहीं पूछा जा सकता कि वो क्यों क्या करता है, वो सबसे बड़ा है। और इन सब से सवाल किया जाएगा, इनसे पूछा जा सकता है। अमित नखदो बिंदु नहीं आलहतन फुलहातु बुरहान रखू हर, और अगर तुमने बना लिए हैं, बुत बना लिए हैं, खुदा बना लिए हैं, तो बताओ उसकी दलील तुम दो कैसे तुमने इनको खुदा बनाया है, खुदा बनाने का क्या उसूल है और किस तरह तुमने ये बात तय की कि खुदा है? तो अपनी दलील लाओ। हाला जिक्र माया और जिक्र मन कबली, ये बातें जो हैं उन लोगों की हैं जो मेरे सामने या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि देखो ये हमारे सामने जो हो रहा है उसके लिहाज से तुम हमको बताओ, और जिक्र मन कबली, और ये बातें जो हम इससे पहले हुई हैं, अम्बिया आए हैं और उन्होंने इसी तरह की दावत दी जो दावत मैं दे रहा हूँ, और इस तरह उन्होंने शिर्क को शिर्क की मजम्मत की जिस तरह मैं कर रहा हूँ, और उन्होंने भी वही ऐसी ही दावत दी जिसमें मैं दावत दे रहा हूँ। ये तस्करा उसी तरह का है जैसे पहले हुआ है। बलखतरूम अक्सर लोग अल्लाह ताला फरमाता है, लेकिन अक्सर लोग हैं जो वाकिफ है, नावाकिफ हैं, और वो हक हक बात से गुरेज करते हैं। अल्लाह ताला ने दो चीज़ें इंसान को हासिल हैं, एक इल्म है, एक जन है। जन तो ये है कि आदमी अंदाजे से और हिसाब लगा किसी चीज़ की हकीकत को समझे, ये जन है। और आदमी बिल्कुल हकीकत को देख ले, हकीकत को बिल्कुल वाज़ह तरीके से मान ले, तो ये इल्म है। इल्म कहते हैं हकीकत के जानने को, और जन कहते हैं हकीकत का अंदाज़ा लगाने को। तो इंसान का अक्सर मालूमात जो हैं वो जन पर मबनी हैं, और थोड़ी मालूमात हैं जो इल्म पर मबनी हैं। फरमाया कि ये लोग जानते नहीं, हकायक से नावाकिफ हैं और इसीलिए एराज करते हैं, और हक इनको बताया जा रहा है, हकायक से नावाकिफ हैं, नबी इनको हक बात बता रहा है, सही बात बता रहा है, तो इनको मानना चाहिए और फिर एराज नहीं करना चाहिए। उमर सल्लम कबल कम रसूलून, फरमाया हमने से पहले जो भी रसूल भेजा उसको यही उस पर जिम्मेदारी डाली कि हमने उसको वही इस बात की, उसको ये तलकीन की कि वो जाकर कहे कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं है, और अल्लाह ताला फरमाता है मेरी इबादत करो। वो कालु तखदर रहमान वलदन सुबहाना बल इबाद मुकरमून, और फिर इन्होंने एक बात ये कही है कि अल्लाह ताला के बेटे करार दिए, बेटे बेटियाँ ये कोई नहीं, सब अल्लाह के बंदे हैं, यानी ईसा अलैहिस्सलाम حضرت عزیر علیہ السلام ان کو خدا کے درجے تک پہنچا دیا ہے. اہل کتاب نے فرمایا کہ یہ نیک لوگ ضرور ہیں لیکن یہ کہ یہ خدا نہیں ہے, یہ ہمارے بندے ہیں, بل عباد مکرمون, یہ بندے ہیں اور ان کو اللہ نے ان کو مکرم بنایا ہے, محترم بنایا ہے. لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون, وہ اللہ تعالیٰ سے آگے نہیں بڑھ سکتے اپنی بات میں, یعنی کوئی اپنی بات نہیں چلا سکتے, جو اللہ کا حکم ہے وہی کریں گے اور اللہ کے حکم ہی سے عمل کرتے ہیں. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشعرون الا لم یرتضی, فرمایا کہ یہ لوگ سفارش بھی نہیں کر سکتے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے جو آگے کی ہے پیچھے کی ہے. یہ سفارش ان لوگوں کی صرف کر سکتے ہیں جن کے لیے اللہ کی رضا ہو, اللہ تعالیٰ جن کے لیے سفارش کرنے کی اجازت دے گا انہی کی سفارش کر سکتے ہیں. تم لوگ یہ کہتے ہو کہ ہم ان کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ تک ہم کو پہنچا دیں گے, ہماری سفارش کریں گے, تو یہ سفارش نہیں کر سکتے, یہ صرف اللہ کی مرضی اور اس کی اجازت سے سفارش کر سکتے ہیں. لا یشعرون وہم من خشیتہ مشفقون, اور یہ باوجود معزز و محترم ہونے کے اللہ کے خوف سے یہ ڈرتے رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے خوف میں ڈرتے رہتے ہیں کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے. یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں, کیسے اللہ کے برابر ہو سکتے ہیں؟ اومن یفل من ہو اومن یقل من ہو انی الہن, اگر ان میں سے کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں خدا ہوں, فذلک نجزی جہنم, تو ہم اس کو جہنم پہنچا دیں گے, چاہے کتنا ہی معزز ہو کتنا ہی نیک ہو, لیکن اگر وہ اپنے کو خدا کہتا ہے تو ہم اس کو جہنم پہنچا دیں گے. کذالک نجزی الظالمین, اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں زیادتی کرنے والوں کو. واخر دعوانا ان الحمد للہ.